बीते का जो चिंतन करे वो सदा पछताता है, आए समय जो सफल करे वो सदा मुस्कुराता है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। जिंदगी में हमें कई सारी परिस्थितियों का हर दिन सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ हम बीती में कई ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट कर देते हैं। अगर हम प्रेजेंट में जिए तो हमारी जिंदगी बहुत ही सिंपल हो जाएगी। प्रेजेंट में जीने के लिए कई सारी बातों के लिए आज हम सब साथ मिले हैं हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। हमारे साथ है प्रोफेसर ओमकार जी। ओम शांति।
ओम शांति।
नमस्ते।
नमस्कार
ओमकार जी। बीती जिसके बारे में आज आधे से ज्यादा मनुष्य जी रहे हैं, उनके बारे में कुछ प्रकाशित कीजिए, क्योंकि बीती जो है ये हमें कई ज्यादा कहीं ना कहीं हमें पीछे की तरफ ले जाता है, जबकि हमें जिंदगी तो आगे में जीनी है। आप इसके बारे में कुछ कहिए।
देखिए बात ऐसी है कि जब हम खाली बैठते हैं
जी,
तो खाली बैठकर कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं, तो हम नॉर्मल देखते हैं कि ज्यादातर टाइम हमारा जो सोच चलती है वो सोच पास्ट से, अतीत से ज्यादा जुड़ी रहती है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने सर्वे किया और रिसर्च की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो थॉट्स हमारे मन में चलते हैं उनमें से 80% थॉट्स पास्ट के होते हैं, अतीत की बातों के होते हैं, और 15% थॉट्स हमारे फ्यूचर के रहते हैं।
अच्छा।
हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं, और प्रेजेंट के लिए, वर्तमान के लिए केवल 5% दे पाते हैं। यानी हमारा ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी का उन बातों को याद करता रहता है जो बातें हो चुकी हैं,
जबकि हमें जीना तो प्रेजेंट में ही है, क्योंकि हमें जो भी हम कर्म करेंगे, जो प्रैक्टिकली हमें समय बिताना है वो तो प्रेजेंट में बिताना है।
जीना हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में
जी,
लेकिन हम सोच उन घटनाओं के बारे में रहे हैं, उन बातों के बारे में रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और जिनको हम कुछ कर ही नहीं सकते, जिस केस में जिनको हम बदल ही नहीं सकते, जो बीत गई उस बातों को, उन बातों को याद कर करके हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं।
पर भाई जी कहीं ना कहीं इमोशंस तो हमारे उन्हीं बातों से जुड़े हैं ना, क्योंकि हमने उतना टाइम बीती में बिताया है, जो भी हमारे साथ घटा है कई बार वो इतना ज्यादा हमारे जिंदगी पर प्रभाव डाल देता है कि वो हमारे प्रेजेंट पे भी पूरी तरह से असर देता है। तो ऐसे में क्या किया जाए?
बिल्कुल सही आपने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमारे साथ ऐसी गुजरती हैं, किसी ने हमारे साथ मान लो गलत व्यवहार किया
जी,
हमारे साथ प्यार से नहीं बोले, किसी ने हमारा अपमान किया, या हमें कोई रिलेशन में कोई धोखा मिला, बिजनेस में धोखा मिला, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज हुई जिसने हमें अंदर तक डीप लेवल तक हमें इफेक्ट डाला
जी।
और वो बात उस वक्त तो हमें दर्द दी थी, दर्द उस बात का हमें उस वक्त मिला था, हमें हर्ट किया था
जी।
लेकिन वर्तमान में जैसे ही हम उस घड़ी, उस पलों के बारे में सोचने लगते हैं, उस घटना के बारे में सोचने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम अतीत को, हम अपने पास्ट को वर्तमान के साथ जोड़ देते हैं। रह रहे हैं हम वर्तमान में और वर्तमान की लिंकिंग हम कर रहे हैं पास्ट के साथ।
लेकिन भाई जी कहीं ना कहीं पास्ट जो है वो हमारे खुद के प्रेजेंट पर भी कई ज्यादा हावी करता है। आज कई बार लोगों का अस्तित्व, उनका पूरा एग्जिस्टेंस बदल जाता है पास्ट से लेकर के। तो ऐसे में पास्ट से सीख करके तो आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं जब हम पास्ट के बारे में बातें करें तो हम कई बार बुरी बातें भी याद रखते हैं, लेकिन कई बार हम पास्ट से सीखते भी हैं। तो ऐसे में पास्ट को पूरी तरह से छोड़ा तो नहीं जा सकता?
नहीं, पास्ट से सीखने का एक अलग चीज है
जी।
कि मान लो आपके साथ किसी ने आपके साथ बहुत अच्छी तरह से नहीं बोला
जी,
गलत व्यवहार किया, आपको लगा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, कुछ भी बोल देता है, कहीं भी इंसल्ट कर देता है, तो आपने वहां से एक मैसेज ले लिया कि इस व्यक्ति से मुझे थोड़ा सावधान होके रहना है।
अच्छा।
थोड़ा सतर्क होके रहना है। तो ये मैसेज कितना था? एक लाइन का। आपने एक मैसेज लेना है, मैसेज तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैसेज के साथ आप उस घटना को, जो जो हुआ, जब जब हुआ, उसको पूरा याद करते रहेंगे, दैट मीन्स वो तो केवल आपके टाइम की वेस्टेज है, वो आपकी एनर्जी की वेस्टेज है। और जैसे ही आप उस घड़ी, उस उन बातों को याद करेंगे, तो आप वर्तमान में दोबारा से हर्ट होंगे। उस चीज ने आपको पास्ट में भी दर्द दिया था, और जैसे ही आपने उस चीज को वर्तमान में लाया और मन ही मन रिपीट किया, उस चीज को दोहराया, यहां तक कि किसी के साथ टेलीफोन में या किसी को बता भी दिया कि देखो वो व्यक्ति को मैं कितना अच्छा समझता था, उसे मेरे साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, उसे मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, उसे ऐसा ऐसा करता तो अच्छा होता। माना हम बातचीत में भी उस चीज को ला रहे हैं और उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो हमने रखी थी उसी को दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए था।
कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड हमेशा बचता रहता है। वो पुरानी बातें फिर से हम रिवाइंड कर करके सुनते रहते हैं
और उनसे अगर हमें कुछ फायदा होता हो तब तो हम करें भी
जी,
उनसे हमारा लॉस है। क्योंकि लॉस ये है कि पहले भी हम दर्द में थे, उस वक्त भी हर्ट हो रहे थे और अभी उन चीजों को रिपीट कर करके दोबारा हर्ट हो रहे हैं और हमारा वर्तमान खराब हो रहा है। भूतकाल तो उस कारण उस वक्त खराब था, वो पास्ट की चीज, लेकिन जिस जैसे ही मैंने उस चीज को रिवाइंड किया तो मेरा वर्तमान में भी उसका इफेक्ट पड़ा। और अगर मेरा वर्तमान ठीक नहीं होगा तो मेरा फ्यूचर भी ठीक नहीं होगा। ना गुजरा हुआ पल ठीक था, वर्तमान में मैंने गुजरे हुए पल को बार बार याद किया और उसका इफेक्ट मेरे वर्तमान में पड़ा, वर्तमान भी खराब हुआ और वर्तमान जो है वही तो आने वाला कल बनेगा।
बिल्कुल,
वो भी तो कल बनेगा, पीछे वो पिछला कल था, आने वाले टाइम में वो दोबारा आएगा
जी।
तो हम दोनों चीजों को इफेक्ट कर रहे हैं, जहां फोकस करना था वहां नहीं कर रहे, हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हमें पता है, हमने पिछली कड़ियों में भी आप इस बात को समझने की कोशिश की कि जो खुशी है, हैप्पीनेस है, जॉय है, उसका क्रिएटर तो मैं खुद था
जी।
हमने खुद क्रिएट करने के बजाय व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, लोगों से, मनी मैटर मटेरियल से खुशी ढूंढने का असफल प्रयास किया
जी।
और उनसे जब खुशी नहीं मिली, हर्ट हुए, तो बार बार वो बातें हमारे मन में बैठ गई और उस चीज को हमने पकड़ के बैठ गए, कस के पकड़ लिया कि इस व्यक्ति ने मेरे को बिजनेस में धोखा दिया है, इस व्यक्ति ने मेरे को रिलेशंस में धोखा दिया है, ये व्यक्ति ऐसा है, और उसके कारण मैंने मन में धारणा भी बना ली उसके प्रति ऐसी ही।
करेक्ट।
और वर्तमान में चाहे वो अच्छा भी है
जी,
तब भी मैं उसके बारे में वही सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा किया था इसलिए ये ऐसा ही है।
ऐसा ही होता है ना, आप एक व्यक्ति को जब मिलते हैं, कई बार ऐसे कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब हम किसी व्यक्ति से भी मिलते हैं, अगर हम नए इम्प्रेशन उनके लिए क्रिएट करते हैं, क्योंकि उस वक्त शायद वो सिचुएशन वैसी रही हो कि उन्होंने वैसे रिएक्ट किया हो, लेकिन अगली बार जब हम उनसे मिलते हैं तो हम एक फ्रेश स्टार्ट करने के बजाय वो पुरानी बातों के साथ ही उस व्यक्ति को रिलेट करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे में उस कम्प्लीटली पुरानी बातों को एडिट करके आगे बढ़ने के लिए आपकी क्या राय है?
उसके लिए हमें पास्ट को भुलाने की आदत डालनी पड़ेगी, अपने ऊपर इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जो बीत गया सो बीत गया, पास्ट इज पास्ट, बीती को बीती जानो, दुनिया ना जीती जानो, ऐसा कहा जाता है। अगर हम पास्ट को बार बार याद करेंगे तो इसका मतलब है हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, जिन मुर्दों को दफन किया जा चुका है उन्हें बार बार कब्र तोड़ के उनको बाहर निकालने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। जैसे हम बार बार उन बातों को सोचेंगे तो हमारी कितनी मन की शक्ति का हास होता है, हमारी सारी मन की शक्ति उन बातों के ऊपर लगी हुई है जिनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, सबक ले सकते हैं हम, लेसन ले सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, लेकिन सबक तो एक लाइन का होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी तो एक लाइन की है, उसके लिए हम पूरी स्टोरी याद रखें और उसको फिर प्रेजेंट के साथ जोड़ें। जैसा आपने कहा कि वो व्यक्ति अब बदल भी सकता है, इस व्यक्ति के बारे में हमने पास्ट के अनुभव के आधार पर एक राय बनाई कि वो व्यक्ति ऐसा है और वो ऐसा व्यवहार करता है, उसने मुझे सबके सामने ऐसा कहा, अब उसने कहा, उसने अपनी तरफ से तो गलत नहीं कहा।
हाँ, जैसे कई बार बॉस के साथ में भी हो जाता है, अगर हमने गलती की है तो हमें सबके बीच में कई बार ह्यूमिलेट किया जाता है, लेकिन ऐसे में क्या किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस बात को लेकर के भूल तो नहीं सकते ना, क्योंकि जब हम अगली बार मिलेंगे शायद बॉस का मूड अभी भी वही हो, वो उसी बात को लेकर के बैठे हो। अगर वो पास्ट में जी रहे हैं, कई बार होता है कि चलिए मैं अपने आप को बदल भी दूं, मैं अपने आप को प्रेजेंट में लेके आ जाऊं, लेकिन मेरे बॉस जो है वो अभी भी उसी गुस्से को लेकर के बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे लिए एक इंप्रेशन बना दी है, तो ऐसे में उनको कैसे प्रेजेंट में लाया जाए?
ऐसे मौके पर हम सोचें कि मेरे वश में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, क्या मैं बॉस के बिहेवियर को चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं बॉस के माइंडसेट को चेंज कर सकती हूँ? तो जवाब मिलेगा नहीं, उसको केवल वही चेंज कर सकते हैं। हाँ, मैं उस घटना से, उनके बिहेवियर से हर्ट ना हूं, ये मेरे हाथ में है, वो मुझे डांटते हैं, उन्होंने मुझे ह्यूमिलेट उस वक्त किया, अब भी मेरे बारे में मान लो अच्छी राय नहीं रखते, तो वो बॉस की डांट मुझे हर्ट नहीं कर रही है, वो बॉस का बिहेवियर मुझे हर्ट नहीं कर रहा है। वो तो कईयों को डांटते हैं, हो सकता है औरों को भी डांटा हो, एक ही बॉस है वो दो आदमियों को तीन आदमियों को डांटता है, तीनों की गलती भी एक जैसी है। अब एक आदमी सोचता है उसको दिल पे लेके बैठ जाता है, हाय मेरे को सबके सामने डांट दिया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी तो अच्छी बात नहीं है। और एक आदमी सोचता है कि बॉस का काम है कहना, हमारा काम है सुनना, बॉस तो हर रोज कहता ही रहता है, वो लाइटर ले रहा है उस बात को।
क्या मैं उस बात से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रही हूँ उनको? क्योंकि वो तो उनकी, देखिए आज अगर वो कोई ना कोई तरीके से मुझे डांट रहे हैं तो उनका काम है कि हमें सुधारना, करेक्ट? वो शायद मुझे बेटर करने के लिए कर रहे हैं ताकि मैं और ज्यादा, मेरी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो और ओवरऑल हमारी कंपनी की प्रोग्रेस हो। लेकिन ऐसे में कई बार हो जाता है कि हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठ जाते हैं कि भाई ठीक है वो तो बोलते ही रहते हैं, हम तो अपनी चाल चल रहे हैं।
मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अगर वो हमें सुधारने के लिए कह रहे हैं, हमें उस मकसद से कह रहे हैं, फिर हम उनको टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते,
बिल्कुल,
फिर तो अच्छी बात है। मैं उस बात को ले रहा हूँ कि वो उन्होंने हमें डांटा, हमें लगा कि ह्यूमिलेट किया और बेवजह डांटा अगर,
बिल्कुल,
तो हम हर्ट ना हो, हम उसको फीलिंग में ना लाए, हम करेक्शन करें अपने आप को, अपने अंदर जितने सुधरने की गुंजाइश है उसको करें, लेकिन उससे हर्ट ना हो, उसको पेन, उसका पेन हमें ना लगे। उसका तरीका ये है कि हम ये सोचें कि क्या चीज मेरे कंट्रोल में है। मैं उन्हें को कंट्रोल नहीं कर सकती,
बिल्कुल,
उनकी एक्सपेक्टेशंस को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे कंट्रोल में मेरा बिहेवियर है, मेरी परफॉर्मेंस है और मेरा ये डिसीजन कि मुझे डांट खा के परेशान होना है, हर्ट होना है या नॉर्मल रहना है, ये चीज मेरे कंट्रोल में है। तो जो चीज मेरे कंट्रोल में है मैंने उसको देखना है। बॉस चाहे सही कारण से डांटा या गलत कारण से डांटा वो उनके अधिकार क्षेत्र है,
करेक्ट,
मैं उसमें जाऊंगी या जाऊंगा तो मुझे मिलने वाला कुछ नहीं है। मुझे तो टॉपिक जो चल रहा है कि मुझे हर हाल में खुश रहना है और वर्तमान में जीना है, पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की जो बातें हैं वो मुझे अभी हर्ट ना करें, उससे बचना है। पास्ट के बारे में कहते हैं कि पास्ट एक सपना है और फ्यूचर एक कल्पना है, केवल वर्तमान अपना है, हमें वर्तमान में जीना सीखना है, वर्तमान के हर सेकंड का, हर पल का हमें एंजॉय करना है। जैसे कहते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एज लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, भूतकाल के बारे में,
बिल्कुल,
हमारे जमाने में तो ऐसा था, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, देखो जी आजकल टाइम बदल गया, हमारे टाइम में ऐसा होता था, उनका ज्यादातर टाइम पास्ट में बीतता है। और जो आजकल के यूथ है, युवा है, नौजवान साथी है, उनका टाइम फ्यूचर में ज्यादा बीतता है,
मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये, तभी मुझे खुशी होगी,
तभी खुशी मिलेगी, हम ये करेंगे वो करेंगे
जी।
इन बातों में वो यूथ ज्यादा रहते हैं,
बिल्कुल,
कोई पास्ट का पोस्टमार्टम कर रहा है तो कोई फ्यूचर का ऑपरेशन कर रहा है,
बिल्कुल।
लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो वर्तमान में रह के वर्तमान को अच्छा बनाए, वर्तमान की हर घड़ी को एंजॉय करके उसका सही यूटिलाइजेशन करके आगे बढ़े,
बिल्कुल।
तो हमें वो आर्ट सीखना है
जी। भाई जी, जैसे अभी कई बच्चे होते हैं आज की डेट में, वैसे तो स्टूडेंट्स अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप ये जानते हैं कि आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चे चाहते हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, लेकिन बाय एनी चांस एक बच्चा अगर फेल हो जाता है कोई स्टैंडर्ड में तो उसके लिए एक बहुत बड़ी डिप्रेशन की बात हो जाती है, क्योंकि उसके सारे जो क्लासमेट्स हैं वो आगे निकल गए हैं और वो पीछे रह गया है। तो ऐसे में अपने पास्ट को भुला करके और फिर आगे की तरफ कि भाई ठीक है मुझे ये स्टैंडर्ड को रिपीट करना है, तो एक साइकोलॉजिकली एक बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, उसके पेरेंट्स, उसकी पूरी स्कूल, वो रोज जब जाएगा स्कूल तो शायद वो रोज बात को, कि पूरे साल उस बात को फेस करना है कि मैं इस स्टैंडर्ड में फेल हो चुका हूं। तो आज एक बड़ा व्यक्ति जब छोटी सी बात में भी फेल हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जब फेल होता है तो उसको तो कई बार होता है कि जिनको पता ही नहीं है कि भाई मैं फेल हूँ, छोटे छोटे बच्चे, एकदम छोटा बच्चा अगर फेल हो उसको पता ही नहीं होता, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन अगर एक फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड का बच्चा अगर फेल होता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है। ये पूरे साल जब भी वो एक्सरसाइज करेगा, कुछ भी करेगा, पढ़ाई करेगा, कोई भी स्टैंडर्ड में कोई भी सब्जेक्ट में जाएगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। तो ऐसे में साइकोलॉजिकली क्या आप उनको राय दे सकते हैं?
देखिए, छोटा बच्चा है, अगर वो एग्जाम में फेल हो जाता है, पहले तो उसको ये माइंडसेट में उसके डालना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी और टीचर्स के भी माइंडसेट में डालने की जरूरत है कि फेल होना कोई बहुत बड़ी नाकामयाबी नहीं है, फेल होना कोई बुराई नहीं है। बुराई वो है जो प्रयास ही नहीं करता। असफल सफल होना, हार और जीत होना, जय और पराजय होना, ये दोनों जीवन के अंग हैं। अगर कोई फेल हो ही जाता है, उसने मेहनत की और उसको रिजल्ट नहीं मिले
जी,
उसको पिछले स्टैंडर्ड में आना पड़ा, तो पहले तो ये जो भ्रांति हमने मन में डाल रखी है कि आगे बढ़ना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं, और जो पेरेंट्स की ओवर एक्सपेक्टेशंस आजकल बच्चों के साथ है,
बिल्कुल
उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि फेल होना सबसे बड़े तो मैं कहूंगा कोई बुराई नहीं है। जिंदगी में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, जितने लोग भी जिन्होंने कामयाबी के आसमान को चूमा है, वो कहीं ना कहीं जिंदगी में किसी ना किसी मोड में फेल हुए हैं। फेलियर का एक्सपीरियंस हर किसी को करना पड़ता है, चाहे उनको अगली स्टेज पे करना पड़ा हो, किसी को बच्चे को छोटी स्टेज में मिल रहा है। इसलिए फेल होके ह्यूमिलेशन फील नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरा बात है कि उस बच्चे ने अगर प्रयास ही नहीं किया, प्रयास करना बच्चे के हाथ में है, उसके लिए बच्चे को जरूर मोटिवेट किया जाए, बच्चे को सिखाया जाए, उसको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो प्रयास तो करे, मेहनत तो करे, स्टडी तो करे। अगर स्टडी की कम या ज्यादा जितनी भी की, तो रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगले साल हो जाएगा।
बिल्कुल।
और साथ में ये बात भी समझने की है कि जो पेरेंट्स और टीचर्स ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आदमी को, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, पढ़ के ही पढ़ेंगे नहीं तो क्या कैरियर होगा, सारा कैरियर खराब हो जाएगा, जिंदगी अंधेरे में हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर बिजनेसमैन, ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट, ज्यादातर एक्टर्स और फील्ड में जिन्होंने कामयाबी को प्राप्त किया है, आप देखेंगे इवन प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे।
बिल्कुल।
उन लोगों ने किसी और चीज के ऊपर फोकस किया और उस चीज में एक्सेलेंस लाके कामयाबी को पाया।
बिल्कुल।
इसलिए इसको सोचना कि फेलियर, किसी ने कहा फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस, फेलियर्स आर द हाईवे फॉर सक्सेस, क्योंकि कामयाब वही होता है जो असफलता की टेस्ट जिसने किया हो। इसलिए इससे डरने की बात नहीं है, बच्चे को ये सिखाओ कि तूने मेहनत करनी है, तूने जीवन में जो भी काम करना है मेहनत से करना है, हार्ड वर्क करना है, शॉर्टकट नहीं ढूंढने हैं, और मेहनत का फल नहीं मिला कोई बात नहीं, जिंदगी में कई रास्ते हैं, कई लाइंस हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ये प्लेयर्स बन सकते हैं, एक्टर्स बन सकते हैं, और भी कई प्रोफेशंस हैं जहां ज्यादा स्टडी की जरूरत नहीं होती। इसलिए बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग देना, बचपन से ही अंडरस्टैंडिंग देना बहुत जरूरी है।
भाई, हॉबीज जो कि आज बहुत ज्यादा इन हो गया है, एक तरीके से ट्रेंड में आ गया, क्योंकि लोग जानते हैं कि हॉबीज हमें बेटर फील कराते हैं और कहीं ना कहीं हमारी एक जो आत्मशक्ति है उसे भी बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज पेरेंट्स हॉबीज को उस तरीके से नहीं देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें तो स्टडीज में परफेक्ट होना है, आज कंप्यूटर इंजीनियर्स डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, लेकिन भविष्य जो है उनका वो वैसे देखते हैं। लेकिन बच्चे कई बार अपनी जो हॉबीज होते हैं, जो पैशन होता है, उसे लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में दोनों के बीच का जो एक कहां एक बैलेंस पाया जाए, क्योंकि पेरेंट्स, क्योंकि आज एक बच्चा है वो अगर बनना चाहता है सिंगर या वो बनना चाहता है एक पेंटर, तो उसे उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। आज जब टीचर्स भी होते हैं, आज अगर आज आप एज अ प्रोफेसर अगर अपने स्टूडेंट्स को देखना चाहेंगे, वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो एक अच्छे साइंटिस्ट बने, लेकिन कोई भी आज क्रिएटिव फील्ड को आज वैसे तो लोग कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को आज क्या राय देना चाहेंगे आप? क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो उतना कमाए, लेकिन उनकी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर रहेगी जब वो क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे। तो एज अ स्टूडेंट आप उन्हें क्या राय देंगे और एज अ पेरेंट आप उन्हें क्या राय देंगे?
देखिए, हमें काम वही करने चाहिए जिनमें हमारा मन लगता हो। हॉबी मतलब जिस काम में हमारा मन लगता हो।
बिल्कुल।
तो सबसे पहले तो हमें क्लैरिफाई करना चाहिए अपने आप को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को कि आपकी हॉबी क्या है, टेस्ट क्या है, जिसके लिए उनका पैशन होगा, जिस चीज के लिए उनके अंदर जिस काम को करने का एक जज्बा होगा उसी काम को वो मन से करेंगे। ये पहला नियम है।
अच्छा।
अगर उसको है इंटरेस्ट इंजीनियर बनने का, सपोज नॉन मेडिकल लेने का इंटरेस्ट है कि इंजीनियर बन के कुछ क्रिएटिव करे, कुछ चीजें बनाए, तो और हम सोच रहे हैं कि उसको डॉक्टर बनाया जाए। अब डॉक्टर्स की लाइन टोटल अलग है, इंजीनियर्स की लाइन टोटल अलग है, तो वो उस फील्ड को हमारे कहने पे थोड़ा तो कर लेगा लेकिन जितना आगे उसको बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की जरूरत है बच्चों के अंदर कि वो करना क्या चाहते हैं, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है। फिर हमें लगता है कि अच्छा वो पेंटिंग करना चाहता है मान लो, फिर हम देखते हैं कि पेंटर्स का करियर कितना अच्छा है। जब अच्छा नहीं नजर आता पेरेंट्स को तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इसका अगर पेंटर बन गया तो कैसे गुजारा चलेगा, डॉक्टर्स इंजीनियर्स आईएएस में अच्छा करियर नजर आता है।
बिल्कुल।
ये भी पेरेंट्स का एक डर होता है, आपने कहा एक्टर बन जाए, आपने कहा प्लेयर बन जाए, सिंगर बन जाए, लेकिन कितने लोग सिंगर बन सकते हैं, कितने लोग प्लेयर बन सकते हैं, इसलिए ये पेरेंट्स का डर रहता है। इसलिए वो सोचते हैं कि अगर इसके पैशन के अनुसार ही हम चले तो ये परेशानी भी हो सकती है। लेकिन इसमें दोनों चीजें हैं, पेरेंट्स का डर भी ये है और दूसरा मैंने बताया कि जिस चीज का पैशन होगा आदमी उसी चीज को कर पाएगा।
बिल्कुल।
इसलिए बच्चे के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, देखिए उसको गहराई से देखिए। अगर उसका पैशन डीप रूटेड है, आपको लगता है कि ये आदमी इसके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर तो आप उसे मत रोकिए। और अगर उसका मोटा मोटा ऊपर से किसी के कहने पे उसने सुन लिया कि पेंटर अच्छे होते हैं, एक्टर बनना अच्छा होता है, सिंगर बनना अच्छा होता है, लेकिन वो पैशन अगर डीप रूटेड नहीं है, बाहर बाहर का है, तो वो उसको ना तो अच्छा सिंगर बना पाएगा, ना अच्छा उसको पेंटर बना पाएगा, ना कोई और चीज दे सकेगा। इसलिए पेरेंट्स को या टीचर्स को बच्चों के साथ बैठ के पहले ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि अगर सचमुच ही उसका इतना पैशन है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर तो उसके लिए आप एनकरेज कीजिए, चाहे वो फोटोग्राफी करना चाहता है, वो वीडियोग्राफर बनना चाहता है,
फोटोग्राफी भी है, ये जैसे जरूरी नहीं है कि उसमें वो उतना ज्यादा अर्न कर पाए, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन एंड ऑफ द डे जब वो बच्चा सोएगा या जो अगर वो बड़े भी हो जाए कल को, वो भी पेरेंट्स बनेंगे, उनके भी बच्चे होंगे, लेकिन उनके लिए एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपने आप को उस लेवल पर लेके आया।
इसके लिए तभी मैंने कहा कि बच्चे से बातचीत करना जरूरी है
जी।
उसको दोनों तरह की चीजें समझाइए, उसको समझाइए कि इसके ये प्लस पॉइंट भी हैं और इसके ये नेगेटिव पॉइंट भी हैं। इस प्रोफेशन में अर्निंग के हिसाब से आप सोचेंगे तो अर्निंग उतनी नहीं हो सकेगी, लेकिन अगर आप अर्निंग का आपको नहीं है मोटो, आपका मोटो है कि मुझे इसमें कुछ और करना है, तो आप इसको चूज कीजिए। तो वो चीजें केवल डिस्कशन के साथ, ओपन डिस्कशन होनी चाहिए बच्चे के साथ, कोई चीज उसके ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए, और उसको पूरी अवेयरनेस, पूरी इन्फॉर्मेशन देने की भी जरूरत है, चारों तरफ की इन्फॉर्मेशन, केवल सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन नहीं कि ये करियर अच्छा है, ये नहीं है अच्छा, इसमें ये चीज है, उसमें वो चीज है, सारी चीजों की उसको एक्सपोजर देके समझा के फिर उसका पैशन आइडेंटिफाई करके फिर उसको उस फील्ड में उसी के डिसीजन पे छोड़ के डालना चाहिए।
बहुत अच्छा भाई जी, आपने एकदम सही कहा। कहीं ना कहीं जब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो पीछे की बातों को पूरी तरह से अपने अंदर भर करके फिर आगे बढ़ रहे होते हैं। एक स्टूडेंट, एक बच्चा जब अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है तो उसे अपने पैशन, उसकी अपनी हॉबीज, उसे अपने साथ में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। अब वो जो करना चाहता है वही करे तो ही वो उसमें सफलता हासिल कर सकता है। और प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो आपके साथ रहता है वो है आपका प्रेजेंट। फ्यूचर में जीने वाला हमेशा दुखी रहता है और पास में रहने वाला भी हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो प्रेजेंट में जीते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, आगे की बातें हम आगे की कड़ी में करेंगे। आपको आने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग।
ओम शांति।
ओम शांति। दोस्तों, प्रेजेंट जो कि हमारे हाथों में है उसे सबसे ज्यादा अपने साथ रखकर चलना चाहिए। सबसे ज्यादा टाइम हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि पास्ट जो है वो तो बीत चुका है, वो आपके हाथ में नहीं है और ना ही आपका फ्यूचर, लेकिन जो आपके साथ है वो आपका प्रेजेंट, तो उसे अपने साथ रख करके वैल्यू कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ओम शांति। कल की कड़ी में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।